ओम शांति। पिछले दो दिन में हम सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन सुन रहे थे। डायबिटीज से इसका क्या संबंध है? क्योंकि बताया, आज तक सिर्फ डायबिटीज का मैनेजमेंट हम दुनिया में डाइट, एक्सरसाइज, दवाई, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं, परंतु आप सभी को यहां बुलाने का क्या लक्ष्य है? वास्तव में देखा गया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बीमारियां, जो भी हार्ट की डिजीज, जो भी बीमारियां ये सब हैं, इसका मूल कारण वास्तव में स्ट्रेस है, तनाव है। मेजोरिटी का ये अनुभव है और ये साइंटिफिक एविडेंस भी है, मैं आपको दिखाया, 60% ऑफ ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। तो जब तक स्ट्रेस को हम टैकल नहीं करते हैं, ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से कोई बच ही नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी भी हॉस्पिटल, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट में जाइए, वो आपको स्ट्रेस से बचने का कोई रास्ता नहीं बता सकता है। आप सभी को यहां बुलाने का यही लक्ष्य है कि आप स्ट्रेस से कैसे बचे, और उसका एक ही विधि है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन सीखने के लिए पहले मैं कौन हूं, मैं साधक कौन हूं, जानना आवश्यक है। और जिनसे, जिनके साथ हम योग लगाएंगे, वो परमात्मा, वो पिता कौन है, वो भी जानना जरूरी है। फिर उनके साथ जब संबंध जोड़ते हैं, जिसको योग कहा जाता है, तो ही उनसे शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से आत्मा का सशक्तिकरण होने के बाद आत्मा में जो मनोबल जागृत होता है, तो जीवन में कई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उस समय हम अविचलित रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, तनाव हमें फिर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी को दो दिन आत्मानुभूति और परमात्मानुभूति कराया। जो यहां नए आए हैं फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, आपके मन में अनेक प्रश्न जरूर उठेगा। ये मेरे मन में भी उठता था, मैं भी जब आया हजारों प्रश्न, स्वाभाविक है। और एक घंटा टाइम में आपके मन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके मन में जो भी प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं, मैं तो कहूंगा, वास्तव में मैं जो आपको सुना रहा हूं, ये सब किससे सीखा जानते हो? हमारे बड़े टीचर सब सामने बैठे हैं, हमारे टीचर बहने, ब्रह्मा कुमारी बहने, इनसे ही सीखा है। तो आगे आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारे जहां भी है आपके नजदीक, वहां जाके बहनों से क्लारीफाई करना है, सब कुछ बताएंगे। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहां जो विवेक सम्मत है, ऐसी बातें आपको, जो लॉजिकल है, युक्ति युक्त है, ऐसी बातें ही सुनाई जाएगी। तो इसलिए आपके मन के सारे संशय वहां दूर हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजयोग मेडिटेशन, जिसके द्वारा ही हम वास्तव में इस बीमारी को सदाकाल के लिए बाय बाय कह सकते हैं, वो मेरा विश्वास है। मैं आपके सन्मुख रखूंगा, और ये योग का प्रयोग कितना इंटेंसली, कितना इफेक्टिवली, कितने लगन से, कितने दृढ़ता से, आत्मनिश्चय से आप करते हो, उसका रिजल्ट उसी अनुसार ही होगा। कोई भी कार्य को जब दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक किया जाता है, उस कार्य में सफलता मिलती है। आपके मन में संशय है, डाउट है, पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, और कर रहे हो, तो रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। तो मैं अभी तक रिजल्ट देख रहा हूं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि डायबिटीज को मिटा सकते हैं हम। तो ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ आप सभी भी अगर करेंगे, तो जरूर इससे इतना फायदा मिलेगा, आप खुद अनुभव करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं जब इधर आऊंगा प्रोग्राम में, आप फिर स्टेज में अनुभव सुनाने के लिए आपको बुलाऊंगा। तो राजयोग का मेडिटेशन हम चर्चा करेंगे, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। वास्तव में मेडिटेशन या राजयोग हमारे जीवन के लिए एक अमृत समान है, इसको जीवनामृत कह सकते हैं। योग के बारे में हमारे भारतवर्ष में काफी चर्चा है, कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम्, योग द्वारा कर्म में कुशलता आती है, योग से मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, योग से हमारे कर्मेंद्रियां शीतल हो जाते हैं, योग द्वारा हम जन्म जन्मांतर के विकर्मों से बच सकते हैं, पुराने संस्कारों को मिटा सकते हैं, अनेक जन्म के पापों को हम भस्म कर सकते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता योग द्वारा हमारे सारी बीमारियां खत्म हो सकती है सदा के लिए। सिर्फ एक जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए भगवान कहते तुम निरोगी बन जाओगे, बच्चे तुम योगी भव बनो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर् भवार्जुन, हे अर्जुन तो निरंतर योगी बन जा। दुनिया में जो योगी नहीं है वो भोगी है, और जो भोगी है वो रोगी है। आज संसार में सभी भोगी और रोगी बन गए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे बच्चे योगी बनो। सिर्फ योगी नहीं, राजयोगी बनो तो मैं तुमको राजाओं का राजा बना दूंगा। अभी भी हम अपने कर्मेंद्रियों का राजा बन सकते हैं, जो अपने कर्मेंद्रियों का गुलाम है वास्तव में वो पशु है। पशु किसे कहा जाता है? जो पाशवद्ध है, जिसको बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ है वो पशु है। जब हम सभी आत्माएं अनेक प्रकार के पुराने स्वभाव संस्कार अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, वास्तव में हम पशु बन जाते हैं। तो ऐसे पशु तुल्य मनुष्यों को फिर भगवान मुक्ति दिलाते हैं शिव बाबा, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है, मुक्तेश्वर कहा जाता है। तो हमें योग सिखाकर योगेश्वर शिव बाबा हमको सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने आए हैं। कहते मेरे बच्चे योगी बनो तो तुम सभी निरोगी बन जाओगे। मैं अनुरोध करूंगा जिसके पास भी मोबाइल है कृपया क्या करेंगे, स्टॉप कर दीजिए। तो अब चर्चा करते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, इतनी सारी बातें योग की विशेषता जो सुनने के बाद, वास्तव में कि ये राजयोग मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन इज गेटिंग मर्ज्ड विद द लव डिवाइन व्हाइल एक्सपीरियंसिंग द 7 ओरिजिनल वर्च्यूज ऑफ द सोल। आत्मा के 7 अनादि गुण बताया था, याद होगा? क्या क्या 7 अनादि गुण बताया? क्या क्या बताया? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये सभी गुणों को अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, भाव विभोर होके उनके प्यार में मगन हो जाना, खो जाना, उसका नाम ही वास्तव में योग है। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो और इजीली बताऊंगा। वास्तव में वेरी सिंपल, आज दुनिया में योग किसे कहते हैं? जो रामदेव बाबा अनुलोम विलोम कपाल भाती सिखाते हैं उसको लोग योग कह देते हैं, परंतु रामदेव बाबा को योग गुरु कहते हैं। लेकिन योग वास्तव में संपूर्ण भिन्न है, हमारा शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। एक्चुअली बहुत सरल शब्द में परमात्मा हमें सिखाते हैं, मेरे बच्चे मुझे प्यार से याद करो, उसका नाम ही योग है। योग शब्द का अर्थ है याद करना, भगवान को याद करना, उसका नाम ही योग है। लेकिन लोगों ने देखा कि भगवान को याद करने के लिए अगर कमर में दर्द, घुटने में दर्द और कहीं दर्द, दांत में दर्द, कान में दर्द, तो भगवान याद आते हैं और ये आए आए करते रहते हैं और इधर ही बुद्धि लगी रहती है। तो पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि आदि देखे कि जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं है मन भगवान में टिकता नहीं है, इसलिए शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये सब आसन प्राणायाम आदि आदि शिक्षा दिए। उन दिनों में कोई हेल्थ क्लब जिम खाना तो था नहीं, तो उन्होंने बिना कुछ साधन लिए हुए ये शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, जो विधि बताया था, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो पोस्चुरल एक्सरसाइजेस है, उसका नाम योगासन रख दिया। लेकिन वास्तव में योग अलग है, आसन अलग है। धीरे धीरे लोग ये सब एक्सरसाइज करते करते सोचे कि यही योग है और इसको भूल गए, जो परमात्मा को याद करना भूल गए। तो योग वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं है, स्वयं को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना। हम कौन है? हम शरीर है नहीं। आज तक हम भगवान को याद करते भी थे, ऐसे नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन हम अपने को शरीर मानकर याद करते थे, इसलिए हमें कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला बताता हूं। दूसरी बात कि भगवान को जानते नहीं थे कि भगवान कौन है। कहते थे सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे पिता हैं, हमारे बाप हैं, तमेव माता च पिता कहते हैं। क्या कोई गधे में, कुत्ते में, उसमें भगवान है तो उनको माँ बाप कहेंगे? तो कभी एक बार एक सत्संग में एक साधु जी आए थे, वही प्रवचन कर रहे थे कि भगवान सब में है, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। तो मैं उधर पूछा उनको, बहुत साल पहले की बात है, मैं बोला कि अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं, कि उनकी प्रार्थना वंदना करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? कहते आपको जो पसंद है, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे किसी का, जो भी चित्र रखो, उनको चिंतन करो, आरती करो, जो उतर करो। मैं बोला भगवान अगर सर्वव्यापी है, सब में है, राम और कृष्ण को मैं तो देखा भी नहीं, जानता भी नहीं हूं कौन है क्या है। अगर भगवान सब में है तो हमारे घर में एक बढ़िया कुत्ता है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको रख के, उसको फोटो रख के मैं कहूंगा क्या, हे कुत्ता, हे भगवान, कितना अच्छा लग, इतना गुस्सा किया मेरे ऊपर की बात मत पूछो। तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है। वो हमारे पिता हैं, वो पतित पावन हैं। जब हम पतित हो जाते हैं, वो हमें पावन बनाने आते हैं, तो उनको बिना जाने, बिना पहचाने याद करने बैठे और खुद को देह समझ कर किए, इसलिए हमें कुछ मिला नहीं। आज किसी भी व्यक्ति को 5 मिनट के लिए भगवान को याद करो बोल के बैठा जाता है, क्या कहता है? सारे लंदन अमेरिका घूम के आ जाएगा, लेकिन भगवान याद नहीं आएगा। 5 मिनट भी डिफिकल्ट। क्यों? अगर कोई व्यक्ति को अपने पिताजी को कि माताजी को याद करो कहेंगे तो कहेगा मेरा मन इधर उधर भटकता है। फिर भगवान जिसको तुम्हें वो माता चाहे पिता कहते हैं, क्यों मन भटक रहा है? क्योंकि हम जानते नहीं उनको कोई। इसलिए परमात्मा तो हम सभी का पतित पावन कल्याणकारी मुक्तेश्वर योगीश्वर, वो तो शिव बाबा है। तो जब पहचानते हैं फिर उनको याद करना सहज है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जब हम अपने आप को देह समझ करके याद करते हैं तो फिर देह की दुनिया याद आएगी। मैं डॉक्टर समझ करके भगवान को याद करूं तो मेरे पेशेंट, मेरी दवाई, मेरी बीमारियां सब याद आएगी। मैं अपने आप को टीचर समझूंगा तो मेरे स्टूडेंट, मेरे और क्लासरूम सब याद आएगा। अगर माँ समझ करके बैठूं तो फिर बच्चे याद आएंगे, आज सब्जी है कि नहीं, दूध है कि नहीं, सब याद आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं देह को भूलो। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे कि मेडिटेशन वास्तव में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मुझे याद करो। मेडिटेशन इज रिमेम्बरिंग गॉड आवर बिलव्ड फादर। वो हमारे पिता हैं, उनको याद करना, उसका नाम ही मेडिटेशन है। लेकिन इसको राजयोग क्यों कहा गया है? व्हाई राजयोग? राजयोग क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में इसमें हम क्या करते हैं, वास्तव में ये शरीर एक घोड़ा जैसा है। इस शरीर, इसमें वास्तव में मन को एक घोड़ा कह सकते हैं आप। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, करता है, कहता है, भगवान मेरा मन तो एक बेलगाम घोड़ा की तरह है, किधर किधर भागता है, प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारा मन अगर घोड़ा है तो तुम्हारा बुद्धि लगाम है। तो बुद्धि रूपी लगाम द्वारा मन को तुम कंट्रोल करो। तो बुद्धि रूपी लगाम द्वारा मन को कंट्रोल करना, उसका नाम ही वास्तव में राजयोग है। और ये राजयोग को इजी योग भी कहा जाता है। इजी योग क्यों कहा जाता है, सहज योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बच्चा भी अभ्यास कर सकता है। दुनिया में जो योग सिखाया जाता है, पद्मासन, शीर्षासन, हर कोई कर सकता है, कर सकते हैं माताएं आप सभी। तो वास्तव में भगवान कहते हैं योग द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाती है, भवसागर से तुम पार हो जाते हो। तो फिर माताएं अगर नहीं कर पाएंगे शीर्षासन पद्मासन तो फिर तो आपकी मुक्ति होगी ही नहीं। नहीं, भगवान जो सिखाएंगे सबके लिए सहज होना चाहिए। तो अपने बाप को जैसे याद करना सहज है, अपने को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना ये बहुत सहज है, इसलिए इसका नाम सहज योग है। और इसका नाम राजयोग क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं हमारे कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, कर्मेंद्रियों का राजा बन जाते हैं इस अभ्यास से। साधारण मनुष्य अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम है, जो नहीं देखना चाहिए देख लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते रहते हैं। लेकिन जो राजयोगी है वो अपने कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे ऐसा चलाता है। और साथ साथ इसको ज्ञान योग कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपको आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो ये योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। और इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर का संबंध नहीं है, हम बुद्धि से मन से परमात्मा को याद करते हैं। और इसको कर्म योग भी कहा जाता है, क्योंकि कर्म करते समय भी ये कर सकते हो, आप खाना पका रहे हो, सब्जी काट रहे हो और कोई टेलीफोन से बात कर तो भी भगवान को याद कर सकता है। तो कर्म करते समय भी हम इसको कर सकते हैं, इसलिए कर्मयोग। आप पद्मासन शीर्षासन कर्म करते समय कर सकेंगे। और भगवान कहते हैं हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म करते समय भी योगयुक्त होकर कर। तो फिर ये अगर आसन प्राणायाम अगर योग होता तो फिर हम कर्म करते समय कैसे करेंगे? भगवान को याद करना हो तो कर्म करते समय भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसको भक्ति योग भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति किसे कहा जाता है? परमात्मा से जो हमारा प्यार है, जो प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है। अर्थात कोई फूल लेके रखता है, कोई चंदन घिस के रखता है, कोई सिर झुकाता है, कोई आरती करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई वंदना करता है, ये सबको हम भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा से जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको हम जो भिन्न भिन्न रूप में अभिव्यक्त करते हैं उसका नाम भक्ति है। तो बिन जाने बिन पहचाने कैसी भक्ति है? आज दुनिया में रास्ते में लोग जाते रहते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ कि रास्ते में कहीं लाल पत्थर है, वहां कोई एक लाल कपड़ा रख दिया है, कुछ क्या है, तो ऐसे ऐसे करेंगे। मैं पूछता हूँ भाई किसको क्या है, कौन है, पता नहीं। तो बिन जाने बिन पहचाने आप रास्ते में जाते समय एक व्यक्ति को जानते नहीं हो, उसको नमस्ते करेंगे? करेंगे? आप उसको पहचानते नहीं हो, नमस्ते करेंगे? और फिर वो लाल पत्थर रखा है ऐसा ऐसा क्यों करते हो? कौन है वो पत्थर? कुछ पता ही नहीं है। तो बिन जाने बिन पहचाने कैसे भक्ति है? तो भगवान को पहचानने के बाद उनके साथ जो प्यार है वास्तव में, उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। जैसे पतिव्रता नारी का प्रेम एक पति से बस, और कहीं अगर बुद्धि है तो उसको क्या कहते हैं? पतिव्रता कहेंगे? नहीं। तो अव्यभिचारी, उसको व्यभिचारिणी कहा जाएगा। इसी प्रकार एक परमात्मा से ही अन एडल्ट्रेटेड लव फॉर द वन सुप्रीम फादर, एक पिता परमात्मा से ही अव्यभिचारी प्यार, इसको संन्यास योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करेंगे? घर द्वार, नौकरी? नहीं, अपने बुराइयों का त्याग करना। भगवान हमें घर बार छोड़ना नहीं सिखाते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को घर से भाग जाओ कहेगा क्या? नहीं नहीं, भगवान भी हमारे माँ बाप है, हमें सुखी देखना चाहेंगे। तो कहते बच्चे तुम घर ग्रस्त में रहो, तुम्हारा घर एक आश्रम जैसा हो, एक पवित्र स्थान, एक मंदिर जैसा हो, और घर ग्रस्त में रहते हुए भी मुझे याद कर सकते हो, लेकिन तुम अपने बुराइयों को त्याग करो, इसलिए इसका नाम संन्यास योग भी है। और इसको समत्व योग भी कहते हैं। समत्व योग अर्थात भगवान हमें बैलेंस रखना सिखाते हैं, बैलेंस रखना, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें आती है, निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ, हर परिस्थिति में हम कैसे बैलेंस रहें। या आप अगर नौकरी करते हो तो घर का नौकरी का, बिजनेस करते हो तो घर का नौकरी का, लौकिक का अलौकिक का, व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन, बहुत बातों का हमें बैलेंस करना पड़ता है। परंतु इस योग जिसको राजयोग कहा जाता है, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग जो बताया, अनेक नाम कर दिए हैं, इसलिए लोग आज कंफ्यूज्ड हैं। कोई कहते हैं मैं ज्ञान योग करता हूं, कोई कहता है मैं भक्ति योग करता हूं, कोई कहता है मैं कर्म योग करता हूं, कई प्रकार के लोग कई बातें हैं, लेकिन वास्तव में योग तो एक है, जैसे भगवान एक है, लेकिन नाम अनेक रखने से आज हम झगड़ रहे हैं। ऐसे ही भगवान योग भी एक है, अनेक प्रकार का नहीं है, लेकिन हम न समझने के कारण तो अनेक नाम रख देने के कारण कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन भगवान हमें जो योग सिखा के गए थे बहुत सहज है, सरल है, सिर्फ याद करना। लेकिन आज भगवान को लोग याद क्यों नहीं कर पाते, क्या क्या कारण है? देखिए, कोई व्यक्ति को जब आप याद करते हो, उसको पहचानते हो, तो ही तो याद करते हो। और वो व्यक्ति कितना भी दूर क्यों ना हो तो भी उसको याद कर सकते हो। आजकल टेलीफोन से देखो, मोबाइल से, कोई कहां भी रहता है, हम जब बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे आमने सामने। लोग कभी बात करते करते कहेंगे कि जो उधर रखा था ना, उधर जो उधर है, उधर आप बोल रहे हो ना, उधर जो है वो ऐसा कर देना, ठीक कर देना, जैसे कि सामने है। करते समय हाथ की एक्टिंग, हाव भाव ऐसा लगता है जैसे कि उसके सामने वाला कोई व्यक्ति को होगा, वो हजार किलोमीटर दूर में। तो भगवान भी हमसे भले कितना भी दूर हो, उनको हम याद कर सकते हैं। तो जैसे टेलीफोन द्वारा हम किसी को बात करते हुए जैसे याद करते हैं उसको, उसका सकल सूरत सब हमारे सामने आ जाता है, ऐसे परमात्मा से बातें करना, उसका नाम ही वास्तव में योग है। मुरली में भगवान हमसे बात करते हैं, और योग में हम बाबा से बात करते हैं। सवेरे सवेरे आप बाबा से दिल की बातें सुनाओ, देखना मुरली में उसी दिन ही आपको उत्तर आ जाएगा। तो योग में हम भगवान से बात करते हैं, और मुरली में भगवान हमसे बात करते हैं। तो देखिए, इस योग का आधार फिर क्या है? जब तक भगवान को हम नहीं पहचानते हैं, वास्तव में ये योग कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको गॉड रियलाइजेशन की बातें सुनाया। भगवान से प्यार नहीं होगा तो भी याद नहीं कर सकते। दुनिया में देखो, बहुत लोगों को आप देखते हो, लेकिन सबको याद कर सकते हो? जिसको पहचानते हो उसकी याद आएगी, नहीं तो कैसे याद आएगी? जिसको जानते नहीं हो कैसे याद करेंगे उसको? दूसरी बात है, दुनिया में कितने हजारों लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन सबकी याद थोड़ी आती है। किसकी याद आती है? जिससे प्यार है, और जिसमें खास आपका रिलेशन है, संबंध है, वो व्यक्ति ज्यादा याद आते हैं। और जिससे कुछ मिलता है, आपके मित्र संबंधी भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप बीमार होते हो, कोई आपके पास आता ही नहीं, पूछता ही नहीं है, आप याद करेंगे उनको? लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा होता है, आपको मदद करता है, वो व्यक्ति ज्यादा याद आता है। तो इसी प्रकार देखिए, आज दुनिया में भगवान कौन है? कौन है भगवान? दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, कोई किसको मान रहे हैं। लेकिन कल भी सुनाया था कि सभी धर्मात्माओं का एक ही मान्यता है कि देखिए, सभी भगवान को ज्योति रूप में मान रहे हैं, सभी धर्म वाले। बाद में फिर उनके फॉलोअर्स, वो जो धर्म गुरु आया है, उसको भगवान मान लिए हैं, लेकिन जितने भी धर्मात्मा आए हैं, सभी का कहना है कि गॉड इज वन। देखिए, ऐसे रखे हैं सब हाथ, जेसस को देखिए, गुरु नानक को देखिए, सब महात्मा बुद्ध को देखिए, ऐसा करते हैं। अर्थात गॉड इज वन एंड गॉड इज एबोव, परमात्मा ऊपर वाला है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो सबकी मान्यता है, सभी कहते हैं। तो परमात्मा को हम जब पहचानते हैं कि वो शिव बाबा है, वो ज्योति स्वरूप है, वो परम धाम में रहते हैं, संसार में जब धर्म ग्लानी होती है, संगम युग में, हर संगम युग में वो आते हैं, मनुष्यों को, पतितों को पावन बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं, तो उनको याद करना सहज है। और उनसे प्यार। देखिए जैसे एक बच्चा मां से प्यार, पशु पंछी भी जिससे भी प्यार मिलता है देखना, एकदम इतना छोटे बच्चे जैसे एकदम बिल्कुल एकदम आके आपके गोदी में भी पशु पंछी भी सोते हैं। हमारे गांधीनगर में अहमदाबाद में एक मोर था, अभी अभी जस्ट लास्ट वीक गांधीनगर होके आया, तो वहां की दीदी हमारी कैलाश दीदी है, वो सुना रही थी। ऐसे जो मोर है आप देख रहे हो इधर भी घूम रहे हैं, इनकी आयु 7 साल होता है, 7 साल, लेकिन वो 14 साल तक जिंदा रहा और पूरा एकदम आके गोदी में सो जाएगा, हाथ से खाएगा एकदम, और दीदी मुरली सुनाते समय आके सामने ऐसा डांस करेगा, और पूरा कुत्ता भी हो तो भी कोई अंदर घुस सकता है, लेकिन मोर अगर है तो पुलिस वाले भी कहते तुम्हारा मोर को पहले ये करो नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे अंदर, क्योंकि कोई आएगा तो उसके पांव में पूरा मरेगा, एकदम ठूक मरेगा एकदम, कोई अंदर घुस ही नहीं सकता है। रात को कोई भी आएगा तो एकदम चिल्लाएगा, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि कोई बच्चा जैसा। एक बार कोई उसको ऐसा पकड़ के उठा के ले जा रहा था, तो अगल बगल वाले देखे बोले कि अरे ये तो ब्रह्मा कुमारियों का मोर है, कहां लेके जा रहे हो, तो छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो एकदम उड़ गया, एक पेड़ पे बैठा था और उतरे नीचे उतरा ही नहीं। फिर लास्ट में दीदी गई, जैसे उसको कोई नाम रखे थे वो नाम से जैसे पुकारे, एकदम उड़ के आके पूरा एकदम बैठ गए हाथ में और फिर गाड़ी में आ गए। तो बता रहे थे इतना जैसे कि एकदम घर का सदस्य है, ऐसा ही पूरा था। तो जहां प्यार मिलता है ऑटोमेटिकली बुद्धि उधर जाती है, ऑटोमेटिकली। और लास्ट में दीदी के गोदी में ही शरीर छोड़ा कहते हैं लास्ट में। सतयुग में ऐसे ही तो होगा, पशु पंछी जानवर सब मिलके हम एकदम प्रेम प्यार से रहेंगे। तो जहां प्यार मिलता है ऑटोमेटिकली मन बुद्धि जाता है। और सबसे ज्यादा प्यार किसे मिलता है, किसे मिलता है, तू प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासी है, किसके लिए कहा जाता है। आजकल अनुभव होता है बाबा जो आते हैं कितना प्यार करते हैं, देख रहे हो कितना प्यार का सागर कैसा। शिवरात्रि पर बाबा इतना प्यार किए, इतना प्यार किए, कोई अगर देखे सचमुच एकदम पिघल जाएगा, ऐसा प्यार दुनिया में कोई लुटा ही नहीं सकता है। अभी लास्ट टर्न में भी कितना, लेकिन जितना प्यारा उतना न्यारा, एक सेकंड में उड़ गए। तो भगवान से भी अगर प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली उनको याद करना सहज होगा, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं तो प्यार कैसे होगा। और भगवान कहते हैं जहां प्राप्ति होती है मन बुद्धि ऑटोमेटिकली वहां जाती है। लोग जानते नहीं कि भगवान से क्या मिलता है, भगवान से क्या मिलता है अगर पता है तो ऑटोमेटिकली भगवान को याद करना सहज हो जाएगा। दुनिया में वास्तव में जो कोई कुछ नहीं दे सकता है वो सर्वप्राप्ति भगवान करा सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि योग में कितने स्टेजेस होते हैं, वास्तव में कितने स्टेजेस हैं योग में, क्या क्या स्टेज है योग का, स्टेजेस बताइए कितने स्टेजेस हैं। सब सुन रहे हैं ना कि ध्यानस्थ हो गए, सब ध्यानस्थ नहीं हो गए ना, लौट के आ जाइए। तो कितने स्टेजेस हैं योग के, कितने बोलो बहने, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ योगा, कोई नहीं, एनीबॉडी, रेज योर हैंड। अरे बाबा के पुराने बच्चे हो, कोई नहीं बता रहे। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ राजयोगा। राजयोग में 4 स्टेजेस होते हैं, अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या, नहीं वो तो सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा सब्जेक्ट है। योग की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस ऑफ योगा। द स्टेज ऑफ इनिशिएशन, स्टेज ऑफ इनिशिएशन। सेकेंड इज द स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन, नहीं सेकेंड इज मेडिटेशन, थर्ड इज कंसेंट्रेशन एंड फोर्थ इज रियलाइजेशन। इनिशिएशन, मेडिटेशन, कंसेंट्रेशन, रियलाइजेशन। वो क्या है जो अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा समझा देता हूं। जो माताएं अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं सोचते होंगे क्या क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनिशिएशन माना प्रारंभिक अवस्था। योग आप करने जा रहे हो तो शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है, बाबा ने क्या कहा है, बच्चे देह को भूलो पहले। जब तक आप देह को नहीं भूलते हो मेरे से कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं। जैसे किसी रबर, किसी तार को कहीं कनेक्ट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो करंट पास कराने के लिए, क्या करते हो, पहले रबड़ को छीलना पड़ता है। आत्मा के ऊपर ये शरीर एक रबड़ जैसा है, ये रबड़ को पहले छीलना पड़ेगा, अर्थात देह को भूलना पड़ेगा। तो पहले आत्म अभिमानी स्थिति, द स्टेज ऑफ सोल कॉन्शसनेस, उसको कहते हैं स्टेज ऑफ इनिशिएशन। पहले अंतर्मुखता की अवस्था में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हो, मैं आत्मा हूं सोचते हो, देह को भूल जाते हो, आपकी लगन लगती है योग करने के लिए, इसलिए इसको लगन की अवस्था कहा जाता है। लगन हिंदी में लगन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन किसे कहा जाता है? मेडिटेशन इज रिपीटेशन और रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड। रिपीटेशन और रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पिता परमात्मा के गुणों को, कर्तव्य को, एहसान को, उपकार को बार बार मनन चिंतन करना, उसका नाम ही मेडिटेशन है। आंखें बंद करके सो जाना, उसको मेडिटेशन नहीं किया जाता है। आंखें बंद करके परम शांति की अनुभूति करना, बहुत अच्छा लगा, मजा आया योग में, और निद्रा देवी के गोदी में थे, परमात्मा के प्यार में गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, उसका नाम ही मेडिटेशन है। तो बाबा की गुणगान करते हुए, उनके स्वरूप को चिंतन करते हुए, उनके उपकार एहसान को चिंतन करते हुए गदगद हो जाना, उसका नाम मेडिटेशन है। उसको हिंदी में हम कहते हैं मनन स्थिति। पहले लगन, फिर है मनन। मनन करना परमात्मा की ज्ञा, उनके स्वरूप को, उनके कर्तव्य को, गुणों को मनन करना। देन कम्स द स्टेज, थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन, अर्थात परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। हे प्रभु, आप मेरे माता हो, पिता हो, शिक्षक हो, गुरु हो, बंधु हो, सखा हो, स्वामी हो, बच्चा हो, सभी सर्व संबंधों का अनुभव करना, रूरुहान करना, बातें करना संबंधों के साथ। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करता है, एक टीचर के साथ कैसे बात करता है, ऐसे परमात्मा हमारे परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, परम पिता है। तो उनके साथ संबंधों का अनुभव करना, वो संबंध रूपी रस का आस्वादन करना, उसका नाम ही वास्तव में स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन। उसको कहते हैं मगन की स्थिति। पहले लगन, फिर है मनन, फिर है मगन, मगन हो जाना। तो जब आप लगन लगेगा, लगी लगन, तो क्या होगा, देहभान भूल जाएगा। फिर मनन करेंगे तो दुनिया भूल जाएगी। फिर मग्न हो गए तब बस एकदम मर्ज हो गए, और तो और दुनिया का सुध बुध कुछ नहीं। फिर लास्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, अर्थात परमात्मा जैसा है, उनसे जो ज्ञान गुण शक्तियों के भंडार है, सूर्य समान है, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, जैसे किसी फुहारे के नीचे आप खड़े हो जाओ तो क्या होता है, कैसा अनुभव होता है? तो ऐसे जैसे आपको ठंडी लग रही है और एकदम हीटर के सामने जाके खड़े हो गए, कैसा अनुभव होता है? ऐसे परमात्मा के एकदम सान्निध्य में, सन्मुख में, जैसे शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें आ रही है और मुझ में समा आ गया पूरा, बिल्कुल मैं भी ऐसा हो गया, ऐसा अनुभव करना, दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। परमात्मा से सर्व प्राप्ति की अनुभूति करने की स्टेज है स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं अगन की स्टेज। अगन की स्थिति, अगन अग्नि स्वरूप, ज्वाला रूप कहते बाबा, जैसे भगवान जैसे हैं, ऐसा अनुभव करना अपने को, सर्व गुणों से भरपूर। तो लगन, मनन, मगन, अगन, तो इनिशिएशन, मेडिटेशन, कंसेंट्रेशन, रियलाइजेशन, ये चार अवस्थाएं योग में होता है। तो हम जब बैठते हैं, अमृत वेला आज आए थे सभी, पक्का आए थे? तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बैठते तो हैं, आके आके बैठ के कहेंगे मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आंख नहीं हूं, नाक नहीं हूं, कान नहीं हूं, बीच में सफेद लाइट हो जाएगा, फिर पौने पांच उतने में रह गए, शरीर को भूलने में ही 45 मिनट हो गया। कई तो फिर कहते हैं ठीक है मैं आत्मा हूं, अभी परमधाम जा रहा हूं, रास्ते में ऐसे जा रहा हूं, सूरज चांद सितारों से ऊपर जा रहा हूं। बस बाबा कहते हैं उनकी गाड़ी स्टार्ट तो होती, कोई स्टार्ट करते करते 4:45 हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अगर राजा बनना है तो योग के स्टेज में 4 से 4:45 जो समय है, उस समय में ये शरीर को भूलने के लिए 45 मिनट अगर बिता दोगे तो प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हें तो विश्व कल्याण करना है। 4 से 4:45 तक बाबा के बच्चे, जो बाबा के बच्चे एकदम लाइट हाउस माइट हाउस स्टेज में परमात्मा जैसा स्वरूप का अनुभव करके समग्र विश्व को लाइट माइट शांति शक्ति प्रकाश प्रेम पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैला के एकदम लाइट हाउस के रूप में रेडिएट होते रहते हैं, ज्ञान सूर्य समान अनुभव करते हैं, वही जाके विश्व महाराज बनेंगे। तो जो मैं आंख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, झुटका कान नहीं हूँ, नाक नहीं हूँ, पूरे और एक झुटका नमाज पढ़ते रहते हैं बीच में, तो राजा बने ही जाके नहीं। योग तो लगाते हैं लेकिन हम कोई हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है और वो प्लग में लगाते लगाते कभी इधर लगा रहे हैं, कभी इधर लगा रहे हैं, कभी किधर, कभी तो लूज कनेक्शन होगा नहीं। नहीं तो चार्ज करना है बैटरी को अच्छी तरह से, ठीक है ना? नहीं करेंगे ठीक से? अभी अलर्ट होके बैठेंगे, करेंगे कमेंट्री दूं, कमेंट्री के साथ अभी करना है पूरा अच्छी तरह से। तो मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, जब तक आप स्टेज ऑफ रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचते हैं, आपके अंदर वो परमात्मा शक्ति लाइट और माइट के रूप में नहीं आएगी और आप में परिवर्तन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कहीं प्लग में लगा दिया, लूज कनेक्शन है, चार्ज कैसे होगा? अच्छी तरह से कनेक्शन लग गया तो एकदम चार्ज हो जाएंगे आप। तो देखिए, परमात्मा से सर्व प्राप्ति तब होगी जब बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आपका कनेक्शन जुड़ेगा। तो योग में भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं होती है, देखिए पहले आप अपने को आत्मा स्वरूप में बैठ के शरीर को भूल जाना साकारी स्वरूप में, फिर कभी एकदम एंजेलिक स्टेज में ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा शरीर एकदम लाइट का लाइट के कारण में हूँ, बिल्कुल ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, प्रकाश का शरीर है, चारों तरफ पवित्रता की किरणें रेडिएट हो रहे हैं। फिर आपको कभी कभी परम धाम जाके एकदम बिंदु रूप में अपने को अनुभव करना, मेरा शरीर भी नहीं है, साकारी आकारी दोनों शरीर नहीं है, मैं एकदम अनादि स्वरूप में एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक झिलमिल सितारा चमक रहा हूँ बिल्कुल। फिर कभी अपने आपको सतयुग में बिल्कुल चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करना। तो जैसा सोचते हैं आप ऐसा अनुभव करेंगे, लेकिन अपना मन को बुद्धि को इतना एकाग्र करना पड़ेगा, मन द्वारा सोचना पड़ेगा, बुद्धि द्वारा देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी बोलूं कि आप चले जाइए अपने घर में, दरवाजा खोलिए, सीधा किचन में चले जाइए, एक ग्लास उठाइए, पानी भरिए, पी लीजिए, दिख रहा है सब? दिख रहा है? बैठे तो इधर हो, कैसे दिख रहा है? कौन देख रहा है? बुद्धि रूपी नेत्र देख रहा है। आप बुद्धि से देख रहे हो, मन से सोच रहे हो, बुद्धि से देख रहे हो। इसी प्रकार योग में आप मन में जो चिंताधारा लाएंगे ऐसा दिखना चाहिए आपको, बुद्धि द्वारा देखना चाहिए। तो जाके मन और बुद्धि दोनों जब एकाग्र होता है ऐसा अनुभव होता है। तो योग में अनुभव होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बैठा के, जब तक दीदी आएगी अभी 5 मिनट में, मैं आपको एक थोड़ा सा कमेंट्री के साथ योग कराता हूं। लेकिन आपको डायबिटीज से ये मेडिटेशन द्वारा कैसे करना है, फिर दीदी मिलने के बाद और एक क्लास है मैडम का, फिर मैं आपको मिलके योग का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सभी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, योग द्वारा क्या प्राप्ति होती है ये सब डिटेल बातें आप बहनों से सुनोगे। एक बार महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपको मेडिटेशन से क्या मिला, आप सारा जीवन बिता दिए मेडिटेशन में, व्हाट यू गेन थ्रू मेडिटेशन? ही रिप्लाइड, क्या बोला होगा बुद्ध ने? क्या बोला, क्या बोला जानते हो? उन्होंने कहा नथिंग एट ऑल, मुझे मेडिटेशन से कुछ भी नहीं मिला। ये पूछ रहा था इसलिए आपको यहां कौन है जो कि कुछ नहीं मिला। लेकिन और क्या बोला आगे सुनिए, देखिए, बट आई लॉस्ट एंगर, आई लॉस्ट डिप्रेशन, आई लॉस्ट इनसिक्योरिटी, आई लॉस्ट द बर्डन ऑफ ओल्ड एज एंड द फियर ऑफ डेथ। मुझे मिला कुछ नहीं लेकिन मेरा क्रोध चला गया, मेरा डिप्रेशन चला गया, मेरा इनसिक्योरिटी फील कर रहा था चला गया, और मेरा जो वृद्धावस्था के जो डर था चला गया, मृत्यु का भय था चला गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन से क्या मिलता है वास्तव में, आप मेडिटेशन करके देखो फिर बताओगे, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा। The value of meditation is not dependent on how much you do or how committed you are. Meditation से आप actually आप कितने घंटे बैठ के योग लगाते हो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन rather the value is measured in how you are able to use it and if it makes a difference in your life. अगर आप योग करते हो तो वास्तव में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है और योग शक्ति को आप दैनंदिन जीवन में कुछ अगर यूज कर पाते हो तो उसका महत्व है. कोई आपको नहीं पूछेगा आप कितने बजे उठते हो, कितने घंटा योग लगाते हो. लोग आपको देखेंगे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, आप अच्छे बोलते हो, सबके साथ व्यवहार अच्छा है, संबंध अच्छा है, ठीक है, वो देखना चाहिए. अगर हम कितने घंटा बैठ के योग लगाते रहते और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहते क्या फायदा है, क्या फायदा है? तो व्यवहारिक जीवन में पीपुल वॉन्ट्स प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी. मैं एक रेलवे स्टेशन में, मुझे याद है बहुत साल पहले रेलवे स्टेशन में आता था माउंट आबू जब आने के लिए हमारे वहां जब टाउन में होम सिटी, तो वहां एक फूड वेंडर था, ये फ्रूट वेंडर था, फल बेचने वाला. तो एक भगवे कपड़े में अंदर माला होता था और राम 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 कंटिन्यूअसली सारा दिन पूरा राम 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 करता था. कोई फल लेने आएगा पूछेगा कि भाई ये केला कितना डजन है, 10 रुपया. राम राम राम. अच्छा 5 रुपया दोगे, बोला ना 10 रुपया, इतना इतना राम 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 राम. अच्छा ठीक है 8 रुपया दोगे, कभी जिंदगी में खरीदा था, जाओ इधर बात. राम राम. क्या मतलब है? तो दुनिया में कोई नहीं देखता है कि आप कितने घंटा बैठ के योग लगाते हो, उसका कोई मतलब नहीं. एक सिपाही लेफ्ट राइट 24 घंटा करता रहता है और दुश्मन आता है तो राइफल ही गिर जाता है. क्या मतलब है? इसलिए योग कितना, वास्तव में योग शक्ति द्वारा आप कितना जीवन में परिवर्तन हुए हो, आपका प्रैक्टिकल जीवन में कितना सुधार हुआ है, लोग वो देखना चाहेंगे. आशा है आप सभी इधर आए हो, अभी योग अभी तक जो हुआ हुआ पुट ए फुल स्टॉप. अभी से जीवन में ऐसा उमंग उत्साह लेके जाइए, ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, जो भी देखे सचमुच ये तो परिवर्तन होके आए हैं, ताली तो बजाओ. तो ऐसा परिवर्तित होके यहां से जाना है, ऐसा ट्रांसफॉर्म होके यहां से जाना है बाबा.